भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। भाषा संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। व्याकरण के नियम किसी भाषा विशेष में लागू होते हैं, किंतु जिन विशेषताओं और प्रवृत्तियों की चर्चा आगे की जाएगी उनका संबंध भाषा मात्र से है। पहला, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार चाहे तो भाषा के संबंध में भी कह सकते हैं कि भाषा समाज की, समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। मातृभाषा शब्द सुनकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाषा की उत्पत्ति माता से होती है या माता की कोई विशिष्ट भाषा है। भाषा सीखी तो जाती है पूरे समाज से और सिखाता है पूरा समाज, किंतु उसका प्रारंभ माता से ही होता है। आरंभिक पाठ माता ही पढ़ाती है, क्योंकि जन्म के बाद जितना सीधा और निकट का संबंध उससे होता है उतना समाज के किसी और प्राणी से नहीं। वस्तुतः भाषा जैसी सामाजिक वस्तु को शिशु तक पहुंचाने का काम, या यूं कहें कि शिशु को भाषा से परिचित कराने का काम पहले पहल माता करती है। इसीलिए उसके ऋण या आभार को स्वीकार करने के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, किंतु जिस भाषा को वह सिखाती है वह समाज की ही संपत्ति है जिसे स्वयं उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना हो ही नहीं सकती। यद्यपि भाषा के अनेक आधार भी होती हैं, जैसे भौतिक या साहित्यिक, पर ये भी उसके सामाजिक रूप के ही विभिन्न पक्ष हैं। भौतिक आधार भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है, तो साहित्यिक भाषा आधार भावों और विचारों की संचित राशि को। तात्पर्य यह है कि चाहे जिस दृष्टि से देखें भाषा का सामाजिक रूप स्पष्ट है। सच पूछिए तो भाषा की उत्पत्ति प्रधानतः सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही हुई है। दो, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। मनुष्य के सामान्य भाषा की भी धारा सतत प्रवाहमान है। जिस प्रकार उद्गम स्थल से लेकर समुद्र पर्यंत नदी की धारा अविच्छिन्न होती है, वह कहीं भी सूखती या टूटती नहीं, उसी प्रकार जब से भाषा आरंभ हुई तब से आज तक चली आ रही है और जब तक मानव समाज रहेगा तब तक उसी प्रकार चलती रहेगी। भाषा की यह गतिशीलता समाज में ही रहती है। व्यक्ति उसे अर्जित कर सकता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकता है, किंतु न तो उसे उत्पन्न कर सकता है और न उसे समाप्त कर सकता है। वह उस विशाल कालजयी प्रवाह का एक नगण्य बिंदु मात्र है जो चाहकर भी अपनी सत्ता पृथक नहीं कर सकता। पृथक होने के प्रयास में उसी की सत्ता मिट जाएगी। तीन, भाषा सर्वव्यापक है। मनुष्य का समस्त कार्यकलाप भाषा से व्याप्त और परिचालित है। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध या व्यक्ति समाज का संबंध भाषा के बिना अकल्पनीय है। संस्कृत के महान भाषा विज्ञानी भर्तृहरि ने इसे ऐसे कहा है, इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्द व्यापाश्रया, और न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगामिग्रते अनुविद्यमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। वाक्यपदीय ब्रह्मकांड पृष्ठ संख्या 123-24। हिंदी अनुवाद। लौकिक कर्तव्य बोध का अर्थात क्या, कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान भाषा पर ही आश्रित है। संसार में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है जो भाषा के बिना संभव हो। समस्त ज्ञान भाषा से अनुसृत जैसा दिखता है। उपर्युक्त कारिकाओं में शब्द भाषा का ही परामर्शक है। तात्पर्य है कि मनुष्य का आंतरिक और बाह्य वैयक्तिक और सामाजिक चिंतन और अभिव्यंजन सबका सब भाषा का परिणाम है। चार, भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। जैसा हमने पहले देखा है, संप्रेषण के सांकेतिक, आंगिक, लिखित आदि अनेक रूप हैं, अर्थात इनमें से किसी के द्वारा व्यक्ति अपना अभिप्राय दूसरों पर प्रकट कर सकता है, किंतु इनकी सीमाएं भी हमने देखी है, अर्थात इनमें किसी के द्वारा वक्तव्य की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव नहीं है। सांकेतिक या आंगिक साधनों की अपूर्णता तो स्पष्ट है ही, लिखित साधन भी उससे मुक्त नहीं है। उच्चरित भाषा में ध्वनि के आरोह अवरोह, काकु आदि की भंगिमा के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वह लिखित भाषा में असंभव है। जहाँ उच्चरित भाषा सप्राण होती है, वहाँ लिखित निष्प्राण। पाठक की ओर से भाषा की भंगिमाओं को लिखित भाषा पर आरोपित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि आप कोई नाटकीय संदर्भ किसी को पढ़कर सुनाते हैं, तो उसे उसी रूप में पढ़ते हैं जिस रूप में वह पात्र उसे बोलता है, यद्यपि उसके लिखित रूप से आरोह अवरोह आदि का कोई निर्देश नहीं होता। तो भाषा का सर्वप्रमुख उपयोग यही है कि उसे बोलकर पारस्परिक संप्रेषण का काम लिया जाए, अर्थात अपना अभिप्राय दूसरों तक पहुंचाया जाए। 5. भाषा अर्जित वस्तु है। मनुष्य जिस प्रकार आँख, कान, नाक, मुंह आदि लेकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भाषा लेकर नहीं। तात्पर्य है कि भाषा जन्मजात वस्तु नहीं है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा इतनी ही विलक्षण और विशिष्टता होती है कि वह भाषा सीख सकता है, पशु नहीं सीख सकते। अर्थात मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की नैसर्गिक शक्ति होती है। उसके मनुष्य होने का इतना ही लाभ है, अन्यथा उसे भाषा सीखनी पड़ती है, और जिस वातावरण और समाज में वह रहता है, उसी की भाषा सीख सकता है। भाषा विशेष की क्षमता लेकर कोई उत्पन्न नहीं होता। भारतीय बच्चे भी अंग्रेजी वातावरण में रहने पर उसी दक्षता से अंग्रेजी बोलने लगते हैं जिस दक्षता से अंग्रेजों के बच्चे। हमने पहले देखा है कि भाषा सामाजिक वस्तु है, और उसकी सामाजिकता का यह अनिवार्य परिणाम है कि उसमें जो रहेगा वह उसे ग्रहण करेगा। यही कारण है कि जिस भाषा के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, उसे वह अनायास सीख लेता है। भाषा के अर्जन का अर्थ यही है कि उसे अपने चारों ओर के वातावरण से सीखना पड़ता है। 6. भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा कैसे अर्जित की जाती है, अर्थात सीखी जाती है, यह शिशुओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है। शिशु को जैसे दूध की घूंटी दी जाती है, उसी तरह भाषा की भी। दूध की घूंटी से उसका शारीरिक विकास होता है, और फिर भाषा की घूंटी से बौद्धिक। छोटी छोटी ध्वनियों से आरंभ कर शब्दों से होते हुए वाक्यों तक की शिक्षा उसे देनी होती है। आसपास के बड़े लोगों को ध्वनियों का जैसा प्रयोग करते हुए देखता है, वैसा ही स्वयं अनुकरण करने का प्रयास करता है। बाबा, मामा, दादा जैसी सरल ध्वनियों से आरंभ होकर वह जटिल से जटिल ध्वनियों के उच्चारण में समर्थ बन जाता है। यह सब मनुष्य की अंतर्निहित और सहज अनुकरण शक्ति के द्वारा ही संभव होता है। किंतु यह अनुकरण शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब अनुकरण का अवसर दिया जाए। अनुकरण की शक्ति रहने पर भी यदि शिशु को निर्जन एकांत स्थान में छोड़ दिया जाए, तो वह वाण विहीन होकर रह जाएगा, भाषा नहीं सीख सकेगा। अतः भाषा सीखने में सीखने वालों की ओर से जहाँ अनुकरण की आवश्यकता है, वहाँ यह भी उतना ही आवश्यक है कि वातावरण भाषा सीखने के अनुकूल हो। जिनकी गोद में या जिनके पास में शिशु रहता है, वे यदि 24 घंटे मौन धारण किए रहें, तो वह कुछ भी नहीं सीख सकेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक एक शब्द को बच्चे के सामने बार बार दोहराना पड़ता है। यह क्रिया उस स्वाभाविकता के साथ चलती है कि न तो सीखने वाले को बोध होता है कि वह कुछ सिखा रहा है, और न सीखने वालों को ही कि वह कुछ सीख रहा है। अलक्ष्य भाव से चलने वाली भाषा की इस शिक्षा से एक दिन वह भाषाहीन शिशु समर्थ भाषा संपन्न प्राणी बन जाता है। इसका सारा श्रेय सामाजिक व्यवस्था को है, जो भाषा सीखने का सर्व प्रमुख साधन है। यों व्याकरण, कोश, आप्तवाक्य, उपमान, विवृत्ति आदि भाषा सीखने के और भी अनेक साधन हैं, लेकिन व्यवहार द्वारा अर्जित भाषा के बाद ही वे संभव हो पाते हैं। यही कारण है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में भारतीय विद्वानों ने व्यवहार को पहला स्थान दिया है। सीखने वालों की दृष्टि से इसे अनुकरण कहेंगे, किंतु समाज की दृष्टि से व्यवहार। शिशु सामाजिक भाषिक व्यवहार का ही अनुकरण करता है। आरंभ में बुद्धि की कमी और भाषण इंद्रियों के यथेक्ष संचालन की क्षमता से विकसित होने के अनुकरण अधूरा रह जाता है। इसीलिए शिशु द्वारा शब्दों का सम्यक उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे मुंह से रोटी ऊती बनकर बाहर निकलती है और पानी बा या पा। व्यवहार से यह अपूर्ण उच्चारण, जो अपूर्ण अनुकरण का परिणाम है, क्रमशः पूर्णता तक पहुंचता है। 7. भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया है। भाषा दो प्रकार से सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा या बौद्धिक प्रयत्न द्वारा। हम अपनी मातृभाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं और अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी आदि भाषाएं बौद्धिक प्रयत्न द्वारा। भाषा का अर्जन चाहे वह अनुकरण द्वारा हो या सचेत बौद्धिक प्रयत्न द्वारा, श्रमसाध्य व्यापार है। अंतर यही है कि अनुकरण की प्रक्रिया से भाषा आदमी तब सीखता है जब बुद्धि विकसित रहती है। इसलिए उस समय का श्रम न तो ज्ञात होता है और न बाद में याद रहता है, परंतु बुद्धि विकसित हो जाने के बाद जब सचेत प्रयत्न द्वारा हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, तब श्रम का अनुभव होता है। इसीलिए मातृभाषा की तुलना में दूसरी भाषा को सीखना कठिन मालूम पड़ता है। तात्विक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं होता। भाषा चाहे जैसे भी सीखी जाए, अधिकार में आ जाने पर सहज हो जाती है और उसके प्रयोग में कोई आयास नहीं करना पड़ता। मातृभाषा के प्रयोग में तो आयास का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु जो भाषा बौद्धिक प्रयास द्वारा सीखी जाती है, वह अभी कुछ दिनों के बाद इतनी आयत्त हो जाती है कि मातृभाषा के समान ही उसका प्रयोग सहज भाव से होने लगता है। जिस प्रकार आंगिक चेष्टाएं स्वाभाविक ढंग से हुआ करती हैं, उसी प्रकार भाषिक चेष्टाएं भी, अर्थात भाषा प्रयोग भी। 8. भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित होती है। भाषा एक होने पर भी सामाजिक स्तर भेद से उसमें भेद आ जाता है। सामान्यतः सभी हिंदी बोलने वाले हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, किंतु सबकी हिंदी एक जैसी नहीं होती। जिसका जैसा सामाजिक स्तर होता है, उसकी भाषा वैसे ही हो जाती है। यह स्तर भेद शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक कारणों से शुरू हुआ है। दार्शनिक की भाषा वही नहीं होगी जो तंबोली की, और न कवि की भाषा वह होगी जो कुली की। विभिन्न स्तर के लोगों की भाषा को ध्यान से सुनने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह स्तर भेद सबसे अधिक शब्द भंडार में देखा जाता है, उससे कम व्याकरण में और उससे कम ध्वनि में। हर पेशे के लोगों का अपना अपना शब्द भंडार होता है। स्वभावतः बोलते समय उस पेशे से संबद्ध शब्द अधिक काम में आते हैं। वकील की भाषा में कानून और कचहरी से संबद्ध शब्द अधिक होते हैं, तो व्यापारी की भाषा में व्यापार से संबद्ध। साधारण बातचीत में भी वे अपनी शब्दावली से मुक्त नहीं हो पाते। एक पेशे के दो व्यक्तियों की बातचीत सुनकर ही आप आसानी से अनुमान कर सकते हैं कि वे किस पेशे के हैं। यह स्तर भेद एक विषय तक ही सीमित नहीं रहता, भाषा में भी दिखाई पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति जिस सतर्कता से ध्वनि का उच्चारण करेगा, उस सतर्कता से अशिक्षित नहीं। व्याकरण के नियमों का जिस कठोरता से शिक्षित पालन करेगा, उस कठोरता से अशिक्षित नहीं। और शब्द भंडार में तो भेद होगा ही। यह प्रवृत्ति सभी स्थानों और कालों की भाषा के लिए सत्य है। 9. भाषा परिवर्तनशील है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा भी परिवर्तित होने वाली वस्तु है। किसी देश और किसी युग की भाषा ऐसी ही नहीं रही जो परिवर्तित न हुई हो। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परिवर्तन में मात्रा का अंतर भले ही हो, परिवर्तन का क्रम अनिवार्य है। यह परिवर्तन भाषा के सभी तत्वों में पाया जाता है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ, इनमें कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहता। बिंदु से बूंद, शाख से शाक, मेघ से मेघ में ध्वनि परिवर्तन स्पष्ट है। इस तरह प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग एक दिन समाप्त हो जाता है और नए शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, प्रयोग में आने लगते हैं। उदाहरणार्थ सत्याग्रह या आंदोलन जैसे शब्द सन 1931 के बाद प्रयोग में आने लगे। अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है यह असुर शब्द को देखने से स्पष्ट होता है। वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ देव होता था, जो बाद में राक्षस का वाचक बन गया। गर्भिणी से ही गाभिन शब्द बना है, पर उसका प्रयोग पशुओं के प्रसंग में होता है। इस तरह से असंख्य उदाहरण भाषा पर ध्यान देने वालों के सामने आते हैं, जो परिवर्तन के चलते क्या से क्या हो गए। जहाँ के रूप में उपाध्याय को कौन पहचानेगा, किस दिन चतुर्वेदी ने सोचा होगा कि वे चौबे बन जाएंगे। किंतु परिवर्तन का क्रम ऐसा है जो चतुर्वेदी और उपाध्याय की ज्ञान गरिमा को भी कुछ नहीं समझता और उन्हें तोड़ मरोड़ देता है। 10. भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। संयोगात्मकता का अर्थ है अर्थ तत्व तथा रचना तत्व का परस्पर मिला रहना। इसी प्रकार प्रकृति प्रत्यय के मेल से अथवा अनेक अर्थ तत्वों को मिलाकर नए शब्दों की रचना की क्षमता भी संयोगात्मकता ही है। संस्कृत के पदों में विभक्ति का जुड़ा रहना अथवा कृत, तद्धित, प्रत्ययों तथा समास आदि की प्रक्रिया से नवीन शब्दों की रचना की संभावना उसकी संयोगात्मक प्रवृत्ति के कारण ही है। जैसे बालक पुस्तकम पठति में विभक्ति शब्द के साथ जुड़ी हुई है, इसी प्रकार दुष्यंत का पुत्र या कुंती का पुत्र कहने की बजाय संस्कृत में दुष्यंती और कौंतेय शब्दों का प्रयोग हो सकता है। संस्कृत साहित्य के अध्येता बाणभट्ट के लंबे लंबे समासों से सुपरिचित हैं। परिवर्तन के क्रम में भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मक होती जाती है, अर्थात संबंध तत्व अर्थ तत्व से जुड़े रहने की बजाय अलग से प्रयुक्त होने लगता है। जैसे हिंदी में राम ने पुस्तक पढ़ी, छुरी से सब्जी काटो आदि वाक्य में ने और से विभक्तियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुई हैं। कभी कभी विभक्तियों का भी लोप हो जाता है, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ न बालक के साथ कोई विभक्ति प्रयुक्त है और न पुस्तक के साथ। इनके कर्तृत्व और कर्मत्व का निर्धारक वाक्य में उनका स्थान है। इस प्रकार योगात्मकता की स्थिति में दुष्यंति और कौंतेय जैसे शब्दों के स्थान पर दुष्यंत का पुत्र और कुंती का पुत्र जैसे प्रयोग होते हैं। यही स्थिति समास की भी होती है। योगात्मक भाषाओं में दो शब्दों के छोटे छोटे समास तो बन जाते हैं, जैसे राजमार्ग, लोक कल्याण आदि पर अनेक शब्दों को मिलाकर लंबे लंबे समास नहीं बनते। 11. भाषा स्थिरीकरण और मानकीकरण से प्रभावित होती है। भाषा के दो विरोधी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, एक विविधता और परिवर्तन की तथा दूसरी एकता और स्थिरीकरण की। परिवर्तन भाषा का अनिवार्य क्रम है, यह हमने अभी देखा है, और उसके परिणाम स्वरूप भाषा में विविधता आ जाती है। इसलिए एक युग की भाषा दूसरे युग की भाषा से भिन्न होती है। किंतु यदि परिवर्तन के इस क्रम पर नियंत्रण न हो तो इतनी जल्दी और इतना अधिक परिवर्तन हो जाए कि एक ही पीढ़ी में भाषा अबोध्य बन जाए। भाषा को बोधगम्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि परिवर्तन के क्रम और गति पर नियंत्रण हो। भाषा में परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है और रूढ़ी से चिपके रहने की या यूं कहें कि परिवर्तन की सहज मानवीय प्रवृत्ति। परिवर्तन और अपरिवर्तन की इन दोनों प्रवृत्तियों में सदा संघर्ष चला करता है। दूसरे शब्दों में इसे केंद्रापगामी और केंद्राभिगामी प्रवृत्तियों का संघर्ष कह सकते हैं। भाषा नैसर्गिक नियम से परिवर्तित होना चाहती है और मनुष्य उस परिवर्तन को रोकना चाहता है। इससे परिवर्तन का काम रुकता तो नहीं, पर उसकी गति मंद अवश्य पड़ जाती है, जो भाषा की आपेक्षिक स्थिरता प्रदान करती है। यह स्थिरता सामाजिक दृष्टि से बहुत वांछनीय है। परंपरा प्राप्त साहित्य, केंद्रीय शासन, परिनिष्ठित भाषा द्वारा शिक्षा, संसार के सुविधाजनक साधन, सैनिक सेवा, समाचार पत्र, रेडियो आदि की भाषा की स्थिरता को बनाए रखने के साधन हैं। जहाँ वे नहीं हैं, वहाँ भाषा में परिवर्तन अधिक तीव्रता से होता है। 12. भाषा पहले उच्चरित रूप में परिवर्तित होती है। भाषा में परिवर्तन उसके उच्चरित और लिखित दोनों रूपों में होता है, किंतु लिखित रूप में परिवर्तन बहुत बाद को आता है। पहले उच्चरित रूप में ही परिवर्तन होता है। कारण यह है कि लिखित रूप उच्चरित का ही सांकेतिक अंकन है। उच्चारण जैसा होता है, लेखन तदनुकूल ही हुआ करता है, किंतु भाषा के उच्चरित रूप में परिवर्तन हो जाने पर भी लिखित रूप में परिवर्तन नहीं होता। उच्चारण और वर्तनी के भेद का यही कारण है। अंग्रेजी में आज बहुत सारे शब्दों की वर्तनी वही है जिस रूप में आज से शताब्दियों पहले उनका उच्चारण होता था। लाफ्टर, डॉटर, दो, थ्रो, शटल आदि शब्दों का उच्चारण आज बहुत बदल गया है, किंतु इनका लिखित रूप वही है जो उच्चारण में आज से शताब्दियों पूर्व था। जब यह खाई बहुत चौड़ी हो जाती है तो वर्तनी में सुधार और संशोधन का प्रश्न उठ खड़ा होता है। 13. प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। प्रत्येक भाषा की बनावट ही नहीं, ढांचा भी दूसरी भाषा से भिन्न होता है। इसके अनेक कारण हैं, जिनकी चर्चा यहाँ अनपेक्षित है। हिंदी में 2 लिंग हैं, गुजराती में 3, हिंदी में भूतकाल के 6 भेद हैं, रूसी में केवल 2, हिंदी में 2 वचन हैं, संस्कृत में 3। कुछ भाषाओं में कुछ ध्वनियों का संयोग संभव है, पर दूसरी भाषाओं में नहीं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में स, ट, र का संयोग खूब प्रचलित है, जैसे स्ट्रेटा, स्ट्रीट आदि में, पर जापानी में यह बिल्कुल संभव नहीं है। रूसी में ज, द, र का प्रयोग खूब चलता है, पर अंग्रेजी या फ्रांसीसी में नहीं। जापानी में कोई भी अक्षर या शब्द स्वरांत ही होगा, व्यंजनांत नहीं, जैसे हरा कीरी, नागा साकी। इसके प्रतिकूल संस्कृत में या हिंदी में अनेक व्यंजनों का संयोग सुलभ है। उदाहरणार्थ कात्स्यन्य में 5 व्यंजनों का संयोग है। यह प्रवृत्ति किसी भाषा के अपने ही शब्दों में नहीं पाई जाती, दूसरी भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं उनमें भी काम करती है। जैसे ग्रीक में 6 ध्वनि नहीं थी और न, प, त, पत के संयोग की सुविधा थी। अतः ग्रीक इतिहास लेखकों ने चंद्रगुप्त को सांद्रगोत्तस लिखा। रूसी में ह नहीं होता, ख होता है, अतः नेहरू को नेहरू ही लिख सकते हैं। 14. भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीकृत होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की भाषा में भेद होना अनिवार्य है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी वाली कहावत में इसी तथ्य को कहा गया है। भेद कम हो या अधिक, पर होगा अवश्य। इसी से भाषा में भाषा या बोली का प्रश्न उठता है। यह भाषा का स्वरूपगत भेद भौगोलिक भेद के आधार पर ही हुआ करता है।